Chintamani mai radha kundo tato. श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय, श्री सत्यनंदन गौर हरि की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत सदस्य भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत सदस्य भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत सदस्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत सदस्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत सदस्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। रूपानुजाचार्य गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत घटी वैष्णव वृंद की जय। गंगा जमुना तुलसी देवी की जय। भक्त देवी की जय। समागत भक्त वृंद की जय। ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। परिक्रमा करी भक्तगण की जय। समवेत भक्त मंडली की जय। गौर प्रमानंद हरि हरि
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाजये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। अंगश्यामलिं शटाभिरवितो मन्दे कृतेन्दे वरम् जाटं जागुतरोचि संविदतम पट्टं दरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोद्यमभुजं ध्यायेन्दाम्। चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलछें निष्काम कर्म आदि भक्ति प्राप्ति द्वार स्वरूप। निष्काम कर्म इत्यादि भक्ति प्राप्ति द्वार स्वरूप। शास्त्र से बोला हुए स्वेच्छावतार चरित्र स्वेच्छा न इत्यादि सैकड़ों वचनों के द्वारा यह विदित होता है। भगवान स्वेच्छा से ही विश्व में अवतरित होते हैं तथापि पूर्ण दृष्टि से जिस प्रकार भूहारण हरण इत्यादि देखा जाता है अवतार काल कारण यथार्थ वो नहीं है। भक्तानां विनोदाय भक्तों का विनोदन करना प्रजवासियों का विनोदन करना यही भगवान के अवतार का कारण है। उसी प्रकार निष्काम कर्म आदि किसी किसी स्थल पर भक्ति का द्वार कहा गया है तो उसमें कोई हानि नहीं है। जत्र योगेन श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यत्न करने पर भी, अत्यंत परिश्रम करने पर भी जो संख ज्ञान दान व्रत तपस्या यज्ञ शास्त्र व्याख्या वेद अध्ययन तथा संन्यास आदि के द्वारा भक्ति नहीं होती, नहीं भक्ति प्राप्त की जाएगी। इसके द्वारा इन शास्त्र वचनों में दान व्रत को भक्ति का स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है, किंतु अन्यत्र ऐसा कहा गया है, यत्र योगेन संख्येन दान व्रत तपो अध्वरै स्वाध्याय व्याख्या संन्यासै प्राप्नुवाद यत्नमान अति। किंतु अन्यत्र जगह कहा गया, व्रत दान तपस्या होम वेद अध्ययन इत्यादि कर्मों के द्वारा भक्ति साधित होती है। इसे सात्विक भक्ति समझो, ज्ञान अंगभूता भक्ति समझो। इसी श्लोक की व्याख्या में कोई कोई कहते हैं चक्रवर्ती साधु, यहां दान करने से विष्णु और वैष्णव के उद्देश्य से सेवा के लिए दान, इसको समझो। व्रत करने से एकादशी इत्यादि व्रत, तपस्या करने से भोग त्याग भगवान के लिए अपि भोग त्याग, और इसको ये भक्ति का अंग इसको बतलाते हैं। इस प्रकार भक्ति के अंगों के द्वारा भक्ति होई या कोई विरोध की बात नहीं है। भक्ति के बिना ज्ञान कर्म योग आदि सब निष्फल है। भक्ति नहीं है तो ये सब निष्फल है। बतला रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रेया स्थिति भक्ति उद्देश्य ते विभो के क्लेश अंत जे केवल बोध लक्ष्य तेषा असौ क्लेशल एव शिष्य नन्न जथा पूर्ण दुखा श्रेय स्थिति। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के अद्भुत प्रभाव को देखकर उनका स्तव कर रहे हैं, हे भगवान निखिल कल्याण को प्राप्त करने का उपाय एकमात्र भक्ति को छोड़कर जो लोग केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर क्लेश स्वीकार करते हैं वे चावल रहित थोथी भूसी फूटने के समान केवल मात्र क्लेश ही क्लेश उनको मिलता है। श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवत के 18-55 श्लोक की सरल वर्षणी टीका में चार प्रकार के केवल ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के साधकों का उल्लेख किया है। जो लोग भक्ति रहे केवल ज्ञान ही मुक्ति देने में समर्थ हैं, ऐसा ज्ञान का ज्ञान साधन के लिए प्रचुर क्लेश स्वीकार करते हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, चावल रहित भूसी कूटने के समान होता है। ये पहले प्रकार के ज्ञानी हैं, ये लोग अत्यंत निंदित लोग हैं। इस श्लोक में आलोच्य श्लोक में ऐसे ही ज्ञानियों की बात कही गई है, और जो लोग सर्वे से सर्वेशा एवं सिद्धानं मूल तत्व चरणार्चन अर्थात साधनों की सिद्धि का मूल कृष्ण के चरणों का अर्चन करना है, इस शास्त्र वाणी को देखकर भक्ति मिश्र ज्ञान की साधना करते हैं। बिना भक्ति के ज्ञान जो कोई भी कर्म अपना फल नहीं दे सकता, यह ज्ञानांग भक्ति सात्विक ही है। इसलिए जो भक्ति करते हैं किंतु मुक्ति के लिए करते हैं उनकी भक्ति को सात्विक ही कहते हैं, सात्विक ही भक्ति। और उस भक्ति के द्वारा ही वो उस मुक्ति को पाते हैं। वे बहुत कष्ट से जोगारूढ़ दशा में आरोहण करके भी भगवान के चरणों में अपराध के फल से, मुक्ति फल से वंचित होकर के नीचे गिर जाते हैं। ये लोग भी निंदित ज्ञानी। इसलिए भागवत में कहा गया, जे अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मारिन पई जस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृष्णेन परम पदम तथा पतन्ति अधो अनागत। आप लोगों ने समझा जो सात्विक भक्ति किसको कहते हैं और निर्गुणा भक्ति किसको कहते हैं। जहां पर भक्ति ज्ञान के अंग के रूप में परिणित है केवल मुक्ति के लिए, वहां पर सात्विक। और निर्गुणा भक्ति प्रेमा भक्ति शुद्ध भक्त अन्नाभिलाषिता सुनम है। उसे कृष्ण के गोलोक में ब्रज में उनकी भक्ति पाई जा सकती है। यहां बतला रहे ब्रह्मा आदि देवता लोग कृष्ण की गर्व स्तुति में वंदना करें। हे कमल लोचन, जो लोग आपके चरणों का अनादर कर अपने को मुक्त अभिमान करते हैं, आपके प्रति भक्ति का अभाव रहने के कारण उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वे कठोर कष्टदायक साधनाओं के फल से जीवन मुक्ति दशा मुझे मिल गई, आरोहण करके भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। और एक से दिन के ज्ञानी वो है भक्ति मिश्र ज्ञान की साधन करते हैं और भगवान के विग्रह को सच्चिदानंदमय समझते हैं। वही विद्या विद्या के दूर हो जाने पर तत्पदार्थ अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मशाही ज्वला करते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ऐसे लोग कुछ लोग प्रशंसनीय हैं और एक प्रकार के ज्ञानी ऐसे होते हैं जो परम सौभाग्यवान है। वे ज्ञान की साधना के समय भगवत भक्तों की कृपा महाभागवत का संग प्राप्त कर लेते हैं। भागवत की निंदा नहीं करते, भगवत विग्रह की निंदा नहीं करते। ऐसे लोग शुद्ध भक्तों का संग पा लेते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा मत भक्ति, वो भक्तों का कृपा पाते हैं और पा करके ये लोग परम सौभाग्यवान है। और एक बात कहूं, याद रखना, गृहस्थ भक्तों के लिए महाप्रभु जी ने कहा अर्थ संग्रह कर सकता है कुछ अपने परिवार के पालन पोषण इत्यादि के लिए, किंतु जब भक्त ब्रह्मचारी और सन्यास हो जाता है उनको एक पैसा भी अपने नाम से अकाउंट रखा अलग से, भक्ति संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती। इस चीज को गांठ बांध कर रखना, ये जन्म भक्ति के लिए भगवान ने दिया, साधु संघ भी दिया है। इसलिए खबरदार, हम लोग जब तक गुरु जी थे एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा और आज भी रखते हैं एक पैसा अपने लिए नहीं। देख लो जो क्या क्या हम कर रहे हैं। इसलिए भाई सावधान रहो, ब्रह्मचारी और सब खबरदार, एक पैसा रखा तो तुम्हारा परमार्थ चित हो जाएगा। दुर्लभेन आत्म मृत्युना क्या है वो, नित्यार्थ देन वित्तेन दुर्लभेन आत्म मृत्युना, ये समझो, ये जन्म की समझो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें साधुओं का संग और परम दुर्लभ है, वो भी मिला, सब कुछ मिला और फिर दुर्भाग्यवश में साधु संग लेना बचे, ऐसा बटोरने की जहां नियत आई तनिक भी उसका जीवन सर्व था संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, इसको गांठ बांध कर रखें, इसमें हम लोगों की कोई क्षति नहीं है, तो रखेंगे। मैं सावधान बार बार करता हूं, समझ लो और नहीं समझोगे तो कोटि कोटि जन्म नष्ट प्रथा चला जाए, ये समझ लो।
Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur is continuing Sri Madhurya Kadambini. Therefore, he begins by saying, Niskarma Karma Yoga, performing karma without being attached to the fruits and offering it to the Lord. This is not bhakti, but it is the doorway to bhakti. Dwar Suru, the doorway to the pure devotion. Therefore, Bhagavan, he is Swatantra and Swaichchamoy. He is independent and acts according to his own desire. Therefore, his appearance in this world, in one sense, is due to his own desire. But why does he appear? External reasons are given in the Gita. Panatnaya sarunam vinasaya chaturskritam. To protect the sadhus and to destroy the demons. Dharma samstapanataya vidyantiyugayuge. To protect Dharma, he appears, but these are external reasons. But the main reason he appears is Bhaktinam Vinodaya, is to give happiness to the devotees, especially the Brijavasis. Therefore, Bhagavatam says, by performance of vrata means vows, following some holy days, by dan, by giving of wealth, by adhyan, by following of shastras, by performing meditation, by taking sannyas, bhakti will not come, because bhakti is independent. Therefore, Bhagavatam completely uproots these false conceptions that bhakti comes by anything else than bhakti. But in the same place in the Srimad Bhagavatam, it says that these things like giving of donations, giving of charity, performing home, performing fire sacrifice, reading of shastra, it also helps bhakti, nourishes bhakti. Then Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur says, if these performances or activities like giving of charity, performing of vratas, vows, meditation are done as angas of bhakti, then we can accept them and they can give devotion. For example, if I want to give dan, some donation, then under the guidance of Guru Vaishnav, for the seva of Guru Vaishnav, then that will nourish devotion. If I want to perform some vrat, some observance of a holy day, then follow ekadasi. Renunciation, akila chasta parayan, akila bhoktyag. For Krishna's happiness, I can renounce all my own happiness. And for Krishna's happiness, I can perform all activities. Therefore, renunciation can also give bhakti if it's performed in that mood. But without devotion, all these activities performed independently of Bhakti Devi are nisphal. They cannot give any fruit at all. Therefore, see Brahmaji in his prayers to Krishna, he says, therefore, Bhakti Devi is the only medicine, the only means to achieve freedom from Maya. Therefore, those persons who leave the shelter of Bhakti Devi and perform independent austerities for liberation, they receive only headache, only hard work for their labor, but no benefit, like someone threshing chaff and hoping to extract wheat. They cannot get anything, only hard work. Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur describes four jnanis, but my pen failed, so I only got three. First, and who is the most rejectable and contemptible, is that jnan sadhak who performs activities for liberation without a touch of devotion, and his goal is mukti. All he receives is hard labor and no fruit. Superior to him is that jnani who mixes his performance of jnana sadhana with a touch of devotion. Means he accepts the archan of the Lord and accepts the murti as Satchidananda. He performs bhakti, but his goal is liberation. Therefore, that is the second type of jnani. And the third type of jnani, therefore, without accepting the Satchidananda Vigraha of the Lord, none of them can get mukti. Therefore, Bhagavatam also says, Brahma says, those who perform austerities for liberation but do not accept the shelter of the lotus feet of Paramparush, Sri Narayan. They perform hard austerities, but because of the offense of not accepting the Lord after achieving liberation, then they fall down again. Superior to them is the performer of Nirgun Bhakti or Prema Bhakti. Therefore, the third type of jnani, who is superior to the first two, he is described in the Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prashanatna Nasachatina Kamsati Samasaravesha Bhutasi Man Bhakti Lamate Param. That third type of jnani, he has no offense. He is not envious of the eternal form of the Lord. He accepts, and he is not performing offense to the Vaishnavas or the Dham or to the holy name. That jnani who get the association of the devotees, he becomes the object of affection and mercy for the Vaishnavas, and that person, that jnani, he will easily, mad bhakti lavate param, he will achieve bhakti. Then fourth, I missed. And last point, Madhav Maharaj will correct me at the end. The last point, some facility has been given for grihasthas to collect money to maintain their lives and maintain their independence. But there has been no facility offered to brahmacharis to keep money in their name. Brahmachari and sannyasi.
Sannyasi.
To keep even one paisa in their own name. The Guru said it's completely guaranteed if they keep anything in their own name for their own enjoyment, separate from the service of Guru Vaishnav, that will be the cause of their destruction. Guruji says in the time of Param Gurudev, even one rupee we never kept for ourselves. And now we are keeping everything, even accounting 7%, 100% for the service of Guru Vaishnav. Therefore, Bhagavatam says, accumulation of wealth is the cause of destruction of transcendental attainment. Therefore, after millions of births, we have achieved this rare human form of birth. Therefore, we should, if you're going to do anything, do it properly.
Karma Yoga में मंत्रादि के दोष से महानर्त की उत्पत्ति होती है भक्ति योग में नहीं कर्म योग में विधि और निषेध है देश काल का नियम पालन भी करना पड़ता है उसमें तनिक भी टूटी हुई तो महानर्त उत्पन्न हो जाता यज्ञ में आहुति देते समय उद्दात्त अनुदात्त अथवा स्वरी स्वर के उच्चारण में भूल हो जाए अथवा कोई वर्ण छूट जाए यथार्थ रूप में वर्ण विन्यास न हो और उचित रूप में उसका प्रयोग न हो तो वो मंत्र वज्र बनकर यज्ञ करने वाले यजमान का ही सर्वनाश कर देता है जैसे स्वस्ता ऋषि यज्ञ में आहुति प्रदान कर रहे थे इंद्र शत्रु विवर्धस्व उनका तात्पर्य भाव तो ये था इंद्र का शत्रु इंद्र को मारने वाला शत्रु उत्पन्न हो किंतु स्वर के उच्चारण से उल्टा हो गया इंद्र शत्रु विवर्धस्व में कुछ उच्चारण में ऐसा गुण हो गया कि इंद्र शत्रु इंद्र ही जिसके शत्रु इंद्र है वो इंद्र ही बढ़ जाए, या तू आ इंद्र ही उसके शत्रु वर्धित हो। और ऐसा हुआ पुत्र, ऐसा हुआ उस समय वृत्रासु जो इंद्र के द्वारा मारा गया। फल की आकांक्षा से अर्जित कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही ज्ञान में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो। अतः ज्ञान योग में कर्म की अधीनता देखी जाती है। और ऐसा भी देखा जाता है कि ज्ञान योग का कोई साधक दुर्भाग्यवश थोड़े से दुराचार में लिप्त हो जाए तो उसको पवन भोजी, निर्लज्ज पवन भोजी कहकर शास्त्रों में उसकी निंदा की। कौन हिरण्यकश्यपु राम वो शास्त्र को के ज्ञाता थे, किंतु दुराचार के कारण ही निंदित कहे गए। ज्ञान का अभ्यास करने वालों का तत्त्वतः थोड़ा सा भी दुराचार साधु संपर्क नहीं होता। एक समय कुछ इंद्र को अभिमान हो गया, देवता दानवों के युद्ध में देवताओं की जीत हुई, उसमें बृहस्पति जी की कृपा से बड़ा उत्सव चल रहा था। सभी आए और इंद्र को धन्यवाद दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं पुष्पमालाओं से। आप ही के वजह से जीत हुई। इतने में बृहस्पति जी गुरु उपस्थित थे। इंद्र ने देख करके भी उनको नहीं देखा, सब लोग मेरा इतना आदर कर रहे हैं, जब गुरु जी आ जाएंगे तो उन्हीं का आदर करेंगे, उपेक्षा की। इसलिए बृहस्पति जी वहीं से अंतर ध्यान हो गए, चले गए कहीं छिप गए। शुक्राचार्य को यह बात मालूम हुई, गुरु की अवज्ञा की है, बस कार्य से तुम लोग आक्रमण कर दो। आक्रमण कराया और देवताओं को पराजित कर दिए। थोड़े से ये दोष के वजह से उनको पराजित कर दिया। उस समय देवता लोग ब्राह्मण ब्रह्मा जी के शरणापन्न हुए। उन्होंने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित रूप में वर्णन करने के लिए देवताओं को परामर्श किया। ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बनाया और उन्होंने इंद्र को नारायण कवच प्रदान किया। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने दैत्यों को पराजित किया। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र होने से असुरों को भी तौहित अर्थात बेटी का बेटा लगते थे, इसलिए आहुति के समय में छिप छिप कर असुरों को यज्ञ का भाव अर्पण कर रहे थे। एक समय इंद्र ने ऐसा देख क्रोध से विश्वरूप की हत्या कर पुरोहित। त्वष्टा ऋषि ने यह जानकर इंद्र की मृत्यु के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। इंद्र शत्रु विवाद इंद्र शत्रु तुम वर्धित हो, ऐसा मंत्र उच्चारण कर यज्ञ में आहुति प्रदान करने लगे। स्वर के तीन प्रकार के भेद हैं, उत्तात उच्च स्वर, अनुदात निम्न स्वर और स्वरी अर्थात मध्यम स्वर। इंद्र शत्रु की वर्धस्व यह शब्द उच्चारण करने के समय यदि इंद्र पर अनुदात छटके से इसका उच्चारण करते हैं तो शत्रु शब्द उद्दात दीर्घ के रूप में इसका उच्चारण हो जाए तो उससे संतान होगा, वह इंद्र की हत्या करेगा। किंतु दैववश इसके ठीक विपरीत उल्टा किया। त्वष्टा ऋषि ने इंद्र शब्द का उद्दात और शत्रु शब्द का अनुदात उच्चारण किया, इसलिए मंत्र का अर्थ उलट गया और इसका अर्थ ऐसा हो गया इंद्र जिसको मारेंगे ऐसी संतान हो उलट। अतः उस यज्ञ से वृत्रासुर का जन्म हुआ और इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। भक्ति में ऐसा नहीं, मूर्खो बदत विष्णाय और धीरो बदत विष्णवे उभयस्तु समं पुण्यम प्रावगारी जनार्दन। मूर्ख लोग कहेंगे जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं वो कह सकते हैं विष्णुआय धीरो बद, और एक कहेंगे विष्णवे जनार्दन भाव ग्रहण है, इसलिए भक्ति में उसको दोनों को एक समान ग्रहण करेंगे। हृदय में जैसा भाव है, शब्द के उच्चारण से न उच्चारण से इसका कोई दिया, इसलिए भक्ति ही भक्ति भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो ज्ञान तपस्या इत्यादि के तरफ में नहीं जाना ही अच्छा है।
Therefore, Shastra gives many vidhi, many rules and regulations, according to time, according to place, according to circumstance. And these must be followed without any deviation. Even a small mistake, even a small deviation from the rules of Shastra, one may get the opposite result, or some disaster may occur. For example, in the path of Karma Yoga, even a small deviation can cause great disturbance. The example is given fully after. Indra and the demigods had defeated the demons. Therefore, Indra had become proud. Indra had forgotten that he had defeated the demons by the mercy of Brihaspati Ji, Guru. Therefore, after the battle, Indra had returned and all the demigods were welcoming him, Indra, Tumari, Jai Jai Ho. They were giving flower garlands. So he became a little puffed up. In the back came Guru Brihaspati. Then Indra was thinking, now is big problem. Now Gurudev will take the big asan and I will be left with nothing. Gurudev will take all the respect. Therefore, Indra pretended not to see his Guru. Sri Brihaspati could understand that Indra is neglecting me, therefore then and there he disappeared. Sukacharya, the guru of the demons now knew, because Indra has made offense to the guru, the demigods will be devoid of all strength. Therefore the demigods attacked and defeated the demons attacked and defeated the devas. The devas went crying to Brahma, and Brahma, on the instructions of Lord Brahma, they appointed Vishwarup as their guru. Vishwarup was a little bit inclined towards the demigods because he was their guru, but because of some family relation, he was also related with the demons. Therefore, he received an iron kavacha from Sri Bhagawan, but when he was given offering in the yajna, then secretly he was chanting some mantras, also giving some offerings to the demons. So then Indraji, when he discovered that, he took off the heads of Vishwarup and killed him. Sri Twasta Rishi, who was the father of Vishwarup, became very angry, and by the performance of karma, he wanted to produce a son who would kill Indra. Therefore, when he was chanting the mantra, in chanting Vedic mantras, there is three types of intonation: softly, medium, or loudly. So some mistake was made in the pronunciation. Therefore, Indra Satrivadasya, instead of having a son that would kill Indra, because of mistaken pronunciation, the opposite occurred. His son was killed by Indra. Therefore, in the path of karma, even a small mistake, the result will be very terrible. Great karmis like Kamsa and Jarasandha, despite knowing all the shastras, because of some fault in their character, some mistake, they became rejectable. The Gyanis are also like this. Some mistake in their Gyan Sadhan and the result cannot be achieved. But in Bhakti, that fault is not there. For example, a Vaishnava who is not very learned, he may say, Vishnaye Namaha, I offer to Vishnu. But the learned Vaishnava will say, Vishnave Namaha. But Bhakti Janananam, but the Supreme Lord Janananam, he accepts the mood of both offerings equally. He sees the intent, not simply the vidhi, the rules and regulations. Therefore, the conclusion is, the bhakta can easily attain Bhagavan, who is not achievable independently by the Gyanis or by the Karmis.
Mahaprabhu Kripa Arthat Shikha.
Anjana Salakaya Chakshurmitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Vande Guru Varadannam Bhakta Vrinda Samannitam Sri Chaitanyam Prabhu Vande Nittananda Sahoditam Nanda Nandanaham Vande Radhika Charanadayam Gopinam Samajuktanam Vrindavanam Manoharam. सबसे पहले आसमान गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमान भक्ति विधान श्री भगवान कृष्ण महाराज तथा विष्णुपाद परिव्राज विचार्य वर्ज श्रीदंडी समिश्रमान भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कवन में अनंत कोटि सष्टम गुरु दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मंचस्थ विराजमान सन्यासी बिंद गुरुगत सज्जन बिंद मातृबिंद हरिकथा प्रभाव सज्जन बिंद सबके चरण कमल में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। करुणा के बरुला करुणालय श्री महाराज जी मुझे आदेश दिए हैं श्रीमान महाप्रभु के अवदान और वैशिष्ट प्रकार के ऊपर कुछ प्रकाश डालने के लिए। राधा भाव दुति सुबलित सचिनंदन गौर हरि इस धराधाम में प्रकटित होकर के नाम संकीर्तन के द्वारा जगत जीवों के हृदय में भक्ति रस और शुद्ध भक्ति प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु के पूर्व आचार्यगण भी आए थे, वे लोग भी भक्ति के बारे में बहुत कुछ आलोचना की प्रचार की। विशेष करके देखा जाए रामानुचार्य मध्वाचार्य और ये समस्त आचार्य पादगण आकर के भक्ति के बारे में सर्वत्र ही प्रचार की, किंतु देखा जाए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी परिकरण के विशेष वैशिष्ट अभी अभी हम लोग श्री महाराज जी के मुखार बिंद से विश्राम चक्रवर्ती पाद के द्वारा रचित यह माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ से श्रवण कर रहे। यदि चैतन्य महाप्रभु जगत में नहीं प्रकट होते और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद ऐसे ऐसे उनके प्रिय परिकर जनजित परिकर नहीं होते तब आज वह समस्त ब्रज की जो प्रिय ब्रज की जो भक्ति आदि ये समस्त अच्छन्न होकर के रह जाते अर्थात प्रकाशन ही होते। इसलिए तो छात्र यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो केवल धरितम धरितम दे राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जहां तो के आचार्य पाद इस प्रकार वर्णन करते हैं। सचिनंदन गौर हरि यदि जगत में प्रकटित नहीं होते विशेष करके राधा की महिमा जाने भक्ति की चरम सीमा कृष्ण के किस प्रकार आराधना की पद्धति वो समस्त आज प्रकाशित नहीं होते। श्रीमद महाप्रभु और उनके परिकर लोग आकर के यह समस्त के प्रचार किया, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने प्रिय पात्र रूप गोस्वामी पाद के हृदय में यह समस्त भाव कर प्रकट कर दिया जिसके जिसे हम लोग अभी अभी श्रवण कर रहे हैं। ये किसको रागानुग भक्ति कहते हैं, किसको वैधि भक्ति कहते हैं, ये समस्त भक्ति के विशेष तात्पर्य, किसको भक्ति कहते हैं, किसको भक्ति रस कहते हैं, भक्ति के विचार क्या है, ये समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर रूप रूप गोस्वामी के द्वारा जगत में प्रचार कराया। यह रूप गोस्वामी के विशेष अवदान और वैशिष्ट आचार्यपाद कहते हैं। नाम तो सभी करते हैं किंतु नाम के साथ सत्यनंदन गौर हरि और उसमें प्रेम देकर के समस्त जगत जीवों के गले में माला के रूप में सुसज्जित कर दिया। इसलिए सचिनंदन गौर हरि केवल नाम करने से ही जब ब्रज प्रेम उदित हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कहते हैं जैसे साधारण रूप में हम लोग श्रवण किया नाम के द्वारा ही सब कुछ हो जाते हैं, किंतु श्री महाराज जी प्रवचन में स्वयं कहते हैं नाम तो एक अद्वैतवादी नाम करते हैं और एक मुक्तिवादी जन वो भी नाम करते हैं, कर्मी भी नाम करते हैं, भक्त भी नाम करते हैं, किंतु नाम के विशेष वैशिष्ट क्या, नाम करने की पद्धति क्या है, इस पद्धति हमारे सचिनंदन गौर हरि रूप गोस्वामी पाद के द्वारा प्रचार कराया। अभी अभी हम लोग श्रवण करते काल श्री महाराज जी अपने अमृत अमृतमय वचन के द्वारा वह हम लोग श्रवण कराया, रूप गोस्वामी पाद पद समृत ग्रंथ में नाम की प्रणाली हम लोग श्रवण कराया कराया। जिस प्रकार तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नाम स्मृतो क्रमेण रसनाम रोसी निजतो तिष्ठन व्रजेत तदानुरागी जनानुगामी काल विनय दखिल मित्त उपदेश सारम। श्रीमन महाप्रभु के परम कृपा पात्र श्री रूप गोस्वामी पाद उपदेश समृत ग्रंथ में इसमें नाम प्रणाली नाम की भजन प्रणाली सुंदर रूप में हम लोग को शिक्षा दिया। जब किस प्रकार नाम करना है, नाम करने के समय किस प्रकार कृष्ण के रूप गुण आदि चिंतन कर चिंतन करना है यह समस्त शिक्षा दी। इसलिए तन्नाम रूप चैतादि सुकृतान स्मृतो कर्ण रसना मनोरसी निजतो तिष्ठन व्रजे। और वो भजन प्रणाली किस प्रकार है, तिष्ठन व्रजे ब्रज में निवास करना है। यदि शरीर के द्वारा संभव नहीं हो तो मन के द्वारा अति अवश्य ही ब्रज में वास करना पड़ेगा। तदानुरागी जनानुगामी और तब अनुरागी भक्त के सदा सर्वदा चरण कमल को उन्धावन करना पड़ेगा। जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं किसी को यदि यथार्थ रूप में माधुर्य रस में प्रवेश करना हो तब उनको अति अवश्य ही तीन नियम का जो है पालन करना पड़ेगा। वह तीन नियम यह है अनारथ राधा पदांगुश रेणु अनाशक्त बिंद अटवित सदान काम असमस तद्भाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधु रस श्राव का। यदि किसी को यदि श्याम रस यानी माधुर्य सिंगार रस में अवगाहन करना हो तो अति अवश्य ही ये तीन विधि के जो है नियम को पालन करना पड़ेगा। उसके अति अवश्य ही राधा जी के चरण कमल को आश्रय करना पड़ेगा। राधा पदांकित भूमि वृंदावन वह स्थान को आश्रय करना पड़ेगा। और रसिक अनुभूति संपन्न महाभागवत के चरण कमल के जब तक आश्रय नहीं करे तब तक संभव नहीं है वह वस्तु की प्राप्ति करना। यह समस्त श्रीमान महाप्रभु के विशेष अवदान और वैशिष्ट दिखाया है। और अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं वैधि भक्ति और रागानुग भक्ति किस प्रकार प्रवेश करना है, वैधि भक्ति किसको कहते हैं, राग भक्ति किसको कहते हैं, राग किसको कहते हैं, यह भी हमारे श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर रूप शिक्षा में स्वयं रूप गोस्वामी को यह समस्त शिक्षा आदि दे दिया। भक्ति के विश्लेषण क्या है, भक्ति किसको कहते हैं, ये समस्त महाप्रभु दिखाए जगत में। सापराजुक्ति ईश्वरे भगवान के प्रति परम अनुरक्ति भक्ति कहा गया, सांगिल्य सूत्र में भी कहा गया। और भी कहता है लौकिक वैदिक के बाप ही जात्रिय पुनते हुए हरि सेवानुकूलिन सा भक्ति रमिच्छते। लौकिक वैदिक जो कुछ भी किया भगवान हरि के लिए किया जाता है उसके भक्ति कहा गया। किंतु श्रीमन महाप्रभु के कृपा पत्र स्वयं श्रीमन महाप्रभु रूप गोस्वामी के हृदय में वो समस्त शक्ति संचार करके भक्ति के एक अवर एक अभिनव रूप दर्शन कराया। संत भी हुए अब हम लोग के निकट पुस्तक रख दिया भक्ति के एक सुंदर जो कक्षा व्याख्या यह दिखाया। अन्ना अभिलाषी सुन्न ज्ञान कर्मादि अनाप्रीतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। यह जो उत्तमा भक्ति के किस प्रकार सुंदर रूप में दिखाया अन्ना अभिलाष विलासिता सुन्नम, इसमें बहुत सुंदर व्याख्या जी जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री जीव गोस्वामी पाद ये समस्त दिखाया किस प्रकार अन्ना विलासिता सुन्नम। अन्ना विलास हम लोग सुंदर नहीं हो सकते है किन्तु अन्ना विलासिता सुन्नम समस्त प्रकार के अनाम से सुनना हो करके और चित्त किसी प्रकार कर्म ज्ञान जगह के द्वारा अनापृत न हो अपृत रहे अपृत न हो यह स्मृत दिखाया और अनुकूल में कृष्णानुशीलन नैतज्यमयी और कृष्ण के कैसे अनुकूलमयी सेवा और कृष्ण के रोजमना वृत्ति उसमें भी दिखाया और उसमें दिखा करके फिर कहते हैं जहां पर व्यक्ति दोष और व्यक्ति दोष ये समस्त विचार वैशिष्ट यह श्लोक में हमारे आचार्य पाद सुविस्तृत रूप में दिखाया जिससे बीच बीच में श्री गुरुदेव के मुखारविंद से हम लोग श्रवण करते हैं। इस वजह से चैतन्य महाप्रभु के विशेषता दिखाया और दिखा वैधिभक्ति किस वैधिभक्ति राधीन जन जन भजे शास्त्र राधिकाए वैधिभक्ति बोली तारे सर्वलोके गाय चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा में श्रीमन महाप्रभु इस प्रसंग में कहते हैं जिसके शास्त्र नहीं हो जिनके शास्त्र जिसके स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति अनुराग नहीं होते और शास्त्र के विधि नगर चलते हैं उसके वैधिभक्ति कहा जाता है। उस वैधिभक्ति के वैधिभक्ति जो पालन करने वाले वो कहां तक पहुंचते हैं वैकुंठ तक पहुंचते हैं और राग मुक्ति किसको कहते हैं राग शब्द के अर्थ के तात्पर्य कहते हैं चित्त रंजकता इति राग। भक्तिविनोद ठाकुर जन्म धर्म में राग शब्द के शब्द के परिभाषा देखते हैं जहां पर चित्त के रंजकता आ जाती है जिसका कहते हैं जैसे हमारी इंद्रिया जो है चक्षु कर्ण नासिका देह त्वचा ये पंच इंद्रिया स्वाभाविक रूप में पंच तत्व मात्रा में अपने आप चले जाते हैं जिस पर हमारे आप कहाँ चले जाते हैं जहाँ पर सुंदर रूप है ये स्वाभाविक तत्व चले जाते उसी प्रकार कहते हैं राग के सकते हैं जत्र जहाँ पर स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति हमारे ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कोई विधि निषेध नहीं देखते शास्त्र शास्त्र निषेध नहीं देख करके स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति लोप हो जाते हैं वह रूप गुण कथा श्रवण आदि कृत्यों में स्वाभाविक रूप में चित्त जाते हैं उसके कहा जाते हैं राग धर्म। इसलिए राग के कोई प्रागात्मिक भक्ति के बारे में कहते हैं कहते इष्टे सरस को राग परम अविश्वता भवे तमय जो भवे दोषा रागात्मिका बोलिता रागात्मिका उन्नसिता जैसा रागानुगा उच्चते विराजंती अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिशु ब्रजवासी जन जाने कृष्ण के नित्य परिकर जो जन होते हैं उनका था राधा ललिता विशाखा आदि नंद जसोदा सुगर सिदाम ऐसे कृष्ण के नित्य परिकर के हृदय में एक स्वाभाविक और प्रेमोमयी तृष्णा रहता है। वो प्रेमोमयी तृष्णा सेवा की ऐसे प्रेमोमयी तृष्णा रहते हैं शांत देश सख वात्सल्य और माधुर्यमय ऐसे प्रेमोमयी तृष्णा रहते हैं स्वाभाविक रूप में कृष्ण की सेवा की भावना रहते हैं और इस तरह परम अभिश्रुता भवे 24 घंटे में 24 घंटे वो लोग कृष्ण सेवा में वो तन्मय होकर के रहते हैं। इसलिए स्टेज की राग परम अभिश्रुता भवे तन्मय तो भवे वो सब रागात्मिका को देता ऐसे नित्य परि कृष्ण के नित्य परिकर जन के कहता है रागात्मिक जन। वह रागात्मिक जनों के भाव की कौन बना प्राप्ति करने के लिए जब साधक साधन भजन करते हैं और उसे कहते हैं रागानुग जन कहा जाता है राग के अनुभव होकर जो भजन करते हैं उसके रागानु का भजन कहा जाता है। ये समस्त विचार श्रीमन महाप्रभु जगत जीवों के निकट प्रकाशित कर दिया श्रीमन महाप्रभु यह हमारे और कहते हैं भक्ति और भक्ति रस इसके विचार भी थोड़ा करके मैं वक्त के समाप्त करता हूँ 15 मिनट हो चुका है सर मुझे पता है। सो इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु के पहले जितने भी आचार्य जो आए हैं भक्ति के बारे में विचार किया किंतु श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर भक्ति रस के ऊपर में विचार और विमर्श करके हम लोग को दिखाया अर्थात इसमें रूप गोस्वामी पाद भक्ति रस अमृत सिंधु में यह संदर्भ में सुंदर रूप में विचार विश्लेषण करते हैं। पहले स्थायी भाव और स्थायी भाव के ऊपर जब 4 प्रकार के सामग्री होते हैं तब उसके कहते हैं भक्ति रस कहा जाता है अर्थात विभाव अनुभव सात्विक व्यभिचारी सामग्री मिलने हरित रसारो चैतन्य चैतन्य में कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं वह जब साई भाव के ऊपर ये 4 प्रकार के सामग्री ब्रह्मचारी जब सम्मिलित होते हैं तब कहा जाता है रस कहा जाता है। इसलिए प्रकार के हैं शांत रस, आसु रस, सख्त रस, वात्सल रस, माधुर्य रस, पांच प्रकार के जो मुख्य रस किस प्रकार साधक के हृदय में उदित होता है यह समय रूपाल भक्त समृद्ध सिंधु उज्जलिनी उज्जलिनी ग्रंथ में इसको वर्णन किया। और यही भक्ति रस फिर पुनः आसदन करने के लिए श्री महाराज जी हमने के बार बार श्रवन कराया केवल रूप गोस्वी पास पाद पास जाने नहीं होगा आपको रघुनाथ दास कृष्ण के चरण कमल को आश्रय करना पड़ेगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते आर कबेन थाली चाने रे करुणा होइबे संसार बासना मोर कबे तुच्छ होबे विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन कबे हम हेरब श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे होइबे आकृति कबे हम बुझब से जुगल प्रीति रूप। और रघुनाथ दास को समीपा अपने ग्रंथ में ये समस्त प्रिपरेशन अर्थात रेशियो दिखाया कितने परिमाण वह सामग्री के लेकर के और रस उत्पन्न होता है वह समस्त अपने ग्रंथ में ये समस्त दिखाया। इसलिए जैसे महाराज जी जैसे उदाहरण देते हैं महाराज जी के वचन को मैं आपके अंदर प्रस्तुत करता हूँ। जैसे किसी को शरबत बनाना है तो शरबत शरबत बनाने के लिए पानी चाहिए, नींबू चाहिए, चीनी चाहिए, कपूर चाहिए और काली मिर्च भी चाहिए। यह समस्त सामग्री तो दे दिया गया किंतु यदि वो सामग्री के यदि आप प्रपोशन यदि नहीं जानते हैं और अच्छी तरह से आप शरबत बना नहीं सकते हैं तो इसी प्रकार हमारे रूप गोस्वामी पाद इस समस्त इंग्रेडिएंट्स जितने प्रकार के सामग्री की तो परिभाषा और सामग्री कैसे एकत्रित किया जाए सब तो दे दिया किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अपने विलाप पुष्पांजलि आदि ग्रंथ में और ग्रंथ में यह सामग्री के मिलन कैसे होती है यह समस्त दिखाया। ये समस्त चैतन्य महाप्रभु रूप और रघुनाथ के हृदय में इस समस्त भक्ति संचार करके जीवन को दिखाया। और फिर आगे जाते थे कैसे कैसे माधुर्य भक्त में प्रवेश करना है यह समस्त भी दिखाया। अधिक मैं बोलना नहीं चाहता हूँ यही करके अपने वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूँ। गुरु वैष्णव मुझे कृपा आशीर्वाद करे जन्म जन्मांतर
एक बात समझो हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य है 300,000 अपतित नाम करते हैं कुछ जोर से उच्चा मन ही मन में कुछ धीरे धीरे और रूप सनातन इत्यादि छह गोस्वामी ये लोग ही नाम करते हैं संख्या पूर्वक नाम का किंतु ये नहीं लिखा ये कितना करते हैं 2,00,000 करते हैं कि 3,00,000 करते हैं कि 1,00,000 विशेष करके रूप रघुनाथ इत्यादि के लिए स्वरूप दामोदर के लिए ये समझो हरिनाम आरंभ किया लीला की स्फूर्ति हो गई बस एक नाम नहीं किया सारा दिन भाव में भी दूर रहे नाम कीर्तन उनका संख्या पूर्वक तो 3,00,000 की 2,00,000 की 1,00,000 की 1 की 10 भी नहीं हुआ कौन श्रेष्ठ नाम है। हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा और प्रहलाद के अवतार हैं ना ब्रह्मा जी के अवतार और रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर कोई ललिता जी के कोई रूपमंजरी रति मंजरी नाम किसका वैशिष्ट्यपूर्ण हो इस चीज को समझो। हरिदास ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में विराजमान थे किंतु प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी को हरि कथा सुनना चाहते थे महाप्रभु से उन्होंने कहा जाओ राय रामानंद से। हरिदास ठाकुर तो थे 3,00,000 नाम करने वाले उनके पास में क्यों नहीं भेजा भेजा कहा और भी जाकर के मति भ्रम हो गए देवदासियों का अपने अंगों से नग्न होकर के मार्जन कर रहे थे
जब सुना तो लौट करके आए। महाप्रभु जी ने हरि कथा सुना नहीं तो समझ गए, जाओ मेरे आदेश से राय रामानंद को जाकर के निवेदन करना कि महाप्रभु जी ने हमको भेजा है आपसे हरि कथा सुनने के लिए, कुछ हरि कथा सुनाओ। फिर गए दूसरे दिन, तब उन्होंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा क्या कथा सुनना चाहते हो, तो आपने जो चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनाई थी वही, और तब उनको जब सुनाया हरि कथा मुक्त हो गए, तब समझा राय रामानंद की महिमा। इसलिए राय रामानंद ये विशाखा सखी के अवतार, रूप गोस्वामी रूप मंजरी, कोई लवंग मंजरी, कोई रति मंजरी, इनका नाम कैसे उत्पन्न होता है भाव से, इनका नाम बहुत उच्च कोटि का है, इस चीज को समझना अच्छी।
ओम ज्ञानमतिविरक्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Shrila Gurudev is explaining the superior position of Srila Rupa Goswami and various associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu in relation to Srila Namacharya Haridas Thakur. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave this title, Nam Acharya, to Srila Haridas Thakur because he was showing the example of chanting 3 lakhs daily of Harinam Mahamantra. Every single day without fail, he was chanting. And we understand that he is also an incarnation of Lord Brahmaji and also partial incarnation of Prahlad Maharaj, with the mood of Prahlad Maharaj. So we know from Shastra that he was chanting in this way regularly. But yet we do not hear how many rounds of Harinam were Sri Rupa, Sri Sanatan and the other Goswamis, how many they were chanting daily. It is not stated in Shastra. The question here is, whose position is superior? Namacharya Srila Haridas Thakur's position, because he was chanting 3 lakhs of Harinam, or Srila Rupa Goswami, Sanatan Goswami, who is it? It is not known how much Harinam they were chanting. But Srila Gurudev is pointing out that Srila Rupa Goswami's chanting of Harinam, what kind of chanting was it? His chanting was on such a high level that even if he would simply chant Hare Krishna, simply one name, Hare Krishna, he would go so deep in absorption in the leelas of Radha and Krishna, and he would even faint as a result of this. So how much higher is his position? Also from the transcendental viewpoint of his eternal position in the relationship with Radha and Krishna, who is Rupa Goswami? Rupa Goswami is personal maidservant of Srimati Radhika, Sri Rupa Manjari, leader of all the maidservants of Srimati Radhika. So, in Jagannath Puri also, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Pradyumna Brahmachari, wanted to hear Harikatha. So Sri Chaitanya Mahaprabhu sent him to Ramananda Roy. Ramananda Roy's position, he was training the Devadasis of Lord Jagannath. The Devadasis, They are only dancing for the pleasure of Lord Jagannath. They never become married, and they are completely absorbed in dancing and singing for his pleasure. So Sri Ramananda Roy, he had composed his own dramas, and he was training the Devi Dasis how to sing, how to dance, how to decorate their bodies. Even he was cleansing their bodies with his own hands. And when Pradyumna Mishra came there, and he saw Ramananda Roy doing such, oh, his mind had some doubt. What is this? It appears like he is some kind of materialistic person attached to sense gratification, associating so intimately with ladies. And later on, Chaitanya Mahaprabhu asked him, did you hear Harikatha from Ramananda Roy? And he expressed his doubt that when he went there, he saw these things. So Chaitanya Mahaprabhu told him to go, to return there, and to question Ramananda Roy. And when he again returned there, and he recited one shloka, there's one shloka, which shloka is that? Yeah, he recited one shloka from Srimad Bhagavatam to Ramananda Roy, and he requested him to reveal the meaning of the shloka. And when Ramananda Roy heard this shloka, he became so absorbed in the moods of which were expressed in the shloka, and Ramananda Roy began to speak and to glorify and to narrate the transcendental name, form, qualities, pastimes of Krishna in Braja for many, many hours. And at the end of this time, he was thanking Pradyumna Mishra so much that he had come and given him this opportunity to glorify Krishna. So in this way, Pradyumna Mishra, he realized the greatness of Ramananda Roy, although he had doubted his position. But Chaitanya Mahaprabhu, he had not given instructions that he should go to hear from Namacharya Haridas Thakur. So the position of Chaitanya Mahaprabhu's eternal associates, his antaranga bhaktas, like Swarup Damodar Goswami, Roy Ramananda, Rupa Goswami and such, they are the most exalted of any of the associates of Chaitanya Mahaprabhu. And in this way, we understand their glories, because Chaitanya Mahaprabhu, out of his mercy, he descended from the highest position in the transcendental world, and he brought with him his eternal associates. They descended within this world, the intimate associates of Radha and Krishna, to assist his mission. Therefore, their glorious position is supreme above all.
प्रपूज्य चरण नित्य लीला प्रविष्ट